نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم اتباع سنت کے مسائل کتاب کا آغاز کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہترین فائدہ لینے والا بنا دے. براہ راست کتاب کو شروع کرنے سے پہلے چند باتیں کہ ہم یہ کتاب کیوں پڑھیں. اس سے پہلے الحمدللہ ہم اس سیریز کی پہلی کتاب کتاب التوحید پڑھ چکے ہیں. اقبال کیلانی صاحب کی کتاب ہے، 24 کتابوں کا ایک سیٹ ہے اور اتنا مکمل اور اتنا جامع سیٹ ہے کہ ہر گھر کی زینت ہونا چاہیے. عموماً لوگ مسائل کا شکار رہتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ہمارے سوال کا جواب دے. ویسے تو علم کی محفل سے اتنا تعلق نہیں ہوتا، لیکن جہاں کوئی دین والا دکھے تو اس سے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے پریشان رہتے ہیں. پھر ایک دوسری پریشانی جو دیکھی گئی وہ کیا ہے کہ کسی سے پوچھیں تو کچھ کہتے ہیں، کسی سے پوچھیں تو کیا کہتے ہیں. اس سب باتوں کا علاج کیا ہے؟ کہ انسان خود براہ راست علم حاصل کر لے. تو اس وقت ہم جس موضوع پہ بات شروع کرنے والے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی احادیث کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور کیا مقام ہے. آج کے دور کے کچھ فتنے کہہ لیجئے، کچھ مسائل ہیں جو حدیث اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہیں. اس میں سے ایک مسئلہ تو یہی ہے کہ قرآن سے بات ملے تو لے لو اور حدیث ہے تو سوچیں گے. لٹرلی لوگوں کو جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو لوگ پھر بعد میں پوچھتے ہیں کہ اچھا ذرا یہ بتائیے کہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ قرآن سے ہے کہ سنت سے ہے. یہ جملہ سنتے ہی ایک دم اندر ایک ہلکی سی یعنی تکلیف بھی ہوتی ہے اور احساس ہوتا ہے کہ یہ انسان یہ بات کیوں کہہ رہا ہے. کیا قرآن میں ہونے میں یا حدیث سے کسی بات کے ہونے میں کوئی فرق ہے؟ کیا کوئی مسئلہ قرآن کی آیت سے تو ثابت ہو سکتا ہے اور حدیث سے نہیں ثابت ہو سکتا؟ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، سورۃ نساء کی آیت 80 ہے. ترجمہ ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اتنا بڑا آنر اللہ نے اپنے نبی کو دے دیا کہ رسول کی بات اصل میں اللہ کی اطاعت ہے. لیکن بعض لوگ اللہ اور رسول کی بات میں فرق کرتے ہیں، ذات میں تو فرق نہیں کرتے. وہاں تو اللہ کے نبی کو اللہ کا ہی ایک حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بات میں فرق کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ حقیقت کیا ہے، یہ جملہ لکھ سکیں تو لکھیے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں تو بہت فرق ہے لیکن بات میں کوئی فرق نہیں. اس لیے کہ وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے، ذات ایک نہیں ہو سکتی لیکن بات ایک ہے. اور بات ایک ہے اس کی بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے. تو سورۃ نجم کی آیت 3 اور 4 میں آتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ان ہوا اللہ وحی یوحا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ وہی جو ان پر نازل کی جاتی ہے اس کے مطابق بات کرتے ہیں. ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر اللہ کی بات تو مان لی اور رسول کی بات نہ مانی تو کیا ہوگا؟ کیا اس سے دین پہ کوئی حرج آتا ہے؟ تو اس کی دلیل پہلے نوٹ کرتے ہیں. سورۃ محمد کی آیت 33 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ و رسول کی اطاعت کرو اور اطاعت سے انحراف کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کرو. کیا پتہ چلا کہ جو اللہ کی بات کو تو مانے اور رسول کی بات کو نہ مانے वो अपने आमाल को ज़ाया करवा देगा। हकीकत यह है कि ये दीन जो आज हम तक पहुंचा है, इसके हमारे तक पहुंचने का ज़रिया मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कलाम अल्लाह का था, पहुंचाना इंसानियत को था। एक तरीका तो इसका ये था कि अल्लाह ताला हर बंदे को खुद बताता बराहे रास्त। बच्चे के पैदा होते ही साथ एक नसीहतनामा आ जाता या इल्हामी किताब आ जाती, तो हर एक उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार लेता। बहुत मुमकिन था, अगर बच्चे के दुनिया में आने के सारे मरहलों को जहन में रख लें, तो अल्लाह की ज़ात से क्या बईद है कि हर बच्चे के साथ एक सहीफ़ा उतरता, ज़िंदगी गुजारने का तरीका होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गो के कुछ लोगों ने इसका मुतालबा भी किया। सूरत मुद्दसिर की आखिरी आयतों में अल्लाह ताला कहते हैं कि हर बंदा चाहता है कि उसको उसका अपना ही सहीफ़ा मिले, कि एयूत सुहुफ़ मुनश्शरा। लेकिन इसमें ख़तरा क्या था कि किताब तो मिल जाती लेकिन साहिबे किताब न मिलते, रोल मॉडल सामने ना होता। आज इस चीज़ ने बात को वाज़ेह कर दिया कि सिर्फ किताबें पढ़ने से बात नहीं बनती जब तक हमारे सामने कोई मॉडल नहीं होता। अमूमन आप देखिए कि आजकल दर्स व तदरीस के लिए ऑडियो और वीडियो या विजुअल तालीम का तरीका इख्तियार किया जाता है, क्योंकि जब आप किसी को कहते हैं कि वुज़ू करो, ऐसे करते हैं। लेकिन जब आप वो वुज़ू करता हुआ कोई शख्स दिखा देते हैं या आप किसी को वुज़ू करता देख लेते हैं, तो कभी नहीं भूलता। ख़वातीन को आपने देखा होगा कि रेसिपीज़ पूछती रहती हैं, कितनी ही पढ़ती हैं और छोड़ देती हैं, कभी याद रहती हैं बातें कभी नहीं, लेकिन जब कभी किसी को एक दफ़ा पकाता हुआ देख लें तो फिर नहीं भूलती बात। तो लिहाजा रसूल की सूरत में क्या था, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, बेशक हमने तुम्हारे लिए रसूल की सूरत में एक बेहतरीन उसवे हसना रखा। अल्लाह ने नबी के ज़रिए शरीयत दी, वज़ू का तरीका उम्मत को नबी ने सिखाया, लेकिन ये तरीका वही था जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से आपको सिखाया गया। आपकी ज़िंदगी से ऐसी बेशुमार मिसालें मिलती हैं कि आप जो चाहते थे अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेज के उस बात को वाज़े कर दिया, और आपने तब तक बात ना की जब तक कि आपको अल्लाह की तरफ से वही ना मिल गई। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल की बात उसको मानना उतना ही लाजिम है जितना अल्लाह की बात को मानना लाजिम है। एक वाक्या हदीस की किताबों में बहुत खूबसूरत तरीके से आता है, अपने लफ्ज़ों में बताना चाहूँगी कि एक औरत हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास आई और उनकी ज़ुबान से एक हदीस सुनी। तवील हदीस है जिसका खुलासा क्या है कि चार काम करने पर अल्लाह ताला की तरफ से लानत है, जिसमें गूदने और गुदवाने का बात जिक्र था, टैटूज बनाना अरब लोगों का रिवाज था और आज भी पढ़े लिखे दौर में इंसान अपनी साफ़ सुथरी जिल्द के ऊपर टैटूज बनवाते हैं, स्किन के अंदर सुराख करवाते थे गर्म सुइयों के साथ, फिर रंग भरते थे, इसको गुदवाना कहते हैं। इसी तरह उसमें दूसरी चीज़ जो है वो बालों दांतों को घिसवाना, ये भी उनके अंदर हुसन का एक मेयार था कि दांतों के साइडों को घिसवा के सुराख करवाते थे, यानी जैसे दांत बहुत चौड़े चौड़े थे तो उसको पतले करवाते थे। तीसरा एक रिवाज था कि बालों में नकली बाल लगवाते थे ताकि लोगों को लगे कि इनके अपने बाल ऐसे हैं। और चौथी चीज़ जो थी कि वो भवों को बीच में से निकालते थे, बाल प्लकिंग करना जिसको कहते हैं। ये चारों जाहिलियत के दौर की सौगातें थीं। तो हज़रत इब्ने मसूद ने ये बात कही तो एक औरत जो थी वो बीच में से उठ के खड़ी हुई, कहने लगी कि इब्ने मसूद ये बताइए कि ये जो बातें आप कह रहे हैं क्या ये हुक्म कुरान में है? इससे लगता है कि उस दौर में भी दिल में शुबे आ सकते थे, या अपनी तसल्ली के लिए। उन्होंने कहा हाँ, ये मसला किताब में है, कुरान में है। चली गई, कुछ दिन गुजरे, वापस आई, कहने लगी आपने कहा था कि ये मसला कुरान में है, मैंने तो पूरा कुरान टटोला, मुझे तो नहीं मिला। कहने लगे अच्छा तुम्हें नहीं मिला? कहा हाँ मुझे नहीं मिला। तो उनको सूरत हशर की वो आयत खोल के दिखा दी कि वमा आताकुम रसूलु फखुज़ूहू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो तुमको रसूल दे उसको ले लो और जिससे रसूल रोके उससे रुक जाओ। कहने लगे, क्या तूने ये आयत नहीं पढ़ी? कहा, ये तो पढ़ी है। तो कहा, जा फिर, मैं तुझे इसका हुक्म देता हूँ। कहने लगी, आपकी तो अपनी बीवी ये काम करती है। कहा, अच्छा, मैं यहाँ बैठा हूँ, जाओ घर जाके देख के आओ मेरी बीवी को, फिर बताना। ये औरत गई घर में, उनकी बीवी से मिली, वापस आई तो कहने की, नहीं, वो मेरी गलत फहमी थी, फितरी तौर पे उनकी भमें ऐसी थीं कि लग रहा था कि उन्होंने इसको सही किया हुआ। कहने लगे, हाँ मुझे पता है। और फिर एक ऐसा जुमला बोला कि जो क़यामत तक के लोगों के लिए कम अज़ कम सोचने का मुकाम तो ज़रूर बनता है। कहने लगे, अगर अब्दुल्ला बिन मसूद की बीवी ये काम करती तो वो मेरे निकाह में ना रहती। यानी अल्लाह के एक हुक्म को मेरी बीवी तोड़े तो फिर वो मेरी बीवी ना रहती। यानी इतना उनके दिल में इस चीज़ से मोहब्बत थी कि जब बात कोई अल्लाह के नबी के ज़रिए से भी हम तक पहुँच जाए तो उस पर अमल करना लाजिम है। ये सूरत हशर की आयत नंबर 7 है। वमा आता कुम रसूलु फखुजू हु वमा नहा कुमन हु फंतहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इकाब। तो लिहाजा हम अपने दिल को इस चीज़ पे मजबूत पाते हैं कि जो बात अल्लाह के नबी के ज़रिए से हमें मिली वो बेहतरीन बात थी। और आज भी और क़यामत तक भी, जब तक हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और आपकी अहादीस को अपनी ज़िंदगी में वो जगह ना देंगे जो मकसूद थी, जो मतलूब थी, तब तक हम लोग अमल नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी बातें इस मौजू पे करने की हैं, लेकिन पहले हम बाकायदा इस बुक को शुरू करेंगे। जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो इंशाल्लाह आखिर में फिर हम इस पे तफसीली बात करेंगे। तो अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए किताब को खोलते हैं। सफ़ा नंबर 47, 47 पे पहला बाब है, तो सभी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। किताब हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जहन को हाजिर रखिए। इसी पेज से पहले सफ़े पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आप देख रहे हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अतानी दखल अल जन्ना। रवाहुल बुहारी। इसका तर्जमा क्या है? जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा। ये छोटी सी रिवायत है, अगर आप हर दिन इसको दोहरा लिया करें तो उम्मीद है कि जब तक हम इस मौजू पे बात पूरी करेंगे ये आपको याद हो चुकी होगी। शुरू करते हैं पहला बाब, अन्नियतु, नियत के मसाइल। आपको याद होगा जिन लोगों ने किताबु तौहीद का पहला लेसन लिया था वहाँ भी पहला चैप्टर यही था, और यही तरीका अहादीस की किताबों में अमूमन मिलता है कि सबसे पहला चैप्टर नियत का है। क्यों? इसलिए कि नियत वो बुनियाद है जिस पे अमल सालेह की इमारत खड़ी होती है। और ये हम सब के लिए एक रिमाइंडर भी है कि क्यों पढ़ने लगे हैं, अपनी नियतों को चेक कर लें। मसला नंबर 1, आमाल के अजर व सवाब का दारोमदार नियत पर है। छोटी सी रिवायत है, कुछ छोटी सी एक्टिविटी भी इस पे दूंगी कि आप इसको बाद में अपने हाथों से लिख के किसी ऐसी जगह पे लगा लें जहां आपकी अक्सर नज़र पड़ती हो, क्योंकि नियत को दुरुस्त रखना बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारे इसमें अकवाल मिलते हैं मुफस्सरीन के और मुहद्दिसीन के और ताबईन के, कि हमें उतनी मेहनत अच्छे काम करने में नहीं लगी, इतना मुश्किल नहीं लगा अच्छे काम करना जितना मुश्किल हमें अपनी नियतों को ठीक रखना रहा। क्योंकि हम कोई काम शुरू तो बड़ी अच्छी नीयत से करते हैं, फिर बाद में नीयत बदल जाती है। तो अल्लाह ना करे कि हम में से किसी के साथ ऐसा हो। हदीस दोहराते हैं, अन उमर इब्न अल खत्ताबी काला समेतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, इन्नमल आमालु बिन नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, फमन कानत हिजरतुहु इलद दुनिया युसीबुहा औ इलम रअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैह। रवाहुल बुहारी। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आमाल का दारोमदार नियतों पर है, हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की। लिहाजा जिस शख्स ने दुनिया हासिल करने की नियत से हिजरत की उसे दुनिया मिलेगी, और जिसने किसी औरत से निकाह के लिए हिजरत की उसे औरत ही मिलेगी। बस मुहाजर ने जिस मकसद के लिए हिजरत की, उसकी हिजरत उसी चीज़ के लिए समझी जाएगी। इसे बुखारी ने रिवायत किया। तो इससे क्या पता चलता है कि बाज़ दफ़ा वो काम जो नेकी समझ के भी किए जाते हैं, लेकिन नीयत ठीक ना होने की वजह से वो इंसान के लिए वबाल बन जाते हैं। जैसा कि कुरान पाक में आता है कि वैलुल लिल मुसल्लीन, खराबी है नमाजियों के लिए, यानी नमाज पढ़ने वालों के लिए खराबी है। क्यों? अल्लज़ीन हुम अन सलातिहिम साखून, जो अपनी नमाजों से गफलत में थे। वहाँ मुफस्सरीन कहते हैं कि अगली आयत से भी पता चलता है कि दिखावे के लिए पढ़ रहे थे, यानी नमाज एक बेहतरीन अमल है, लेकिन अगर ये अमल करते हुए नियत से हो जाए कि दूसरा देखे और मेरी तारीफ करे, तो वही इंसान के लिए तबाही का जरिया बनेगी। एक और रिवायत, आप कहेंगे कि आज हम अहादीस क्यों पढ़ रहे हैं? इसकी दो वजूहात हैं। पहली, किताब के साथ मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी क्योंकि आपके लिए टॉपिक नया था, आपको अंदाज नहीं पता था, और अब फैमिलियर हो गए हैं तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी वजह यह है कि हम इत्तबाए सुन्नत ही के मसाइल कर रहे हैं, तो अल्लाह के नबी के अल्फाज को अपनी ज़ुबान से अदा करना इस मौजू से मुनासिबत रखता है। एक तीसरी वजह, अगर वो मैंने आपको बता दी तो फिर तो आप बड़ी मोहब्बत और बड़े शौक से पढ़ेंगे, और वो क्या कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। क्या? कि जो शख्स मेरी बात को सुने, उसको याद करे और उसी तरह बयान करे जैसे कि उसको रखा, यानी एहसा करे उसका, तो अल्लाह उसके चेहरे को तरोताज़ा रखे, यानी उसका चेहरा चमकता हुआ रहे। अब लोग तो चेहरे की चमक के लिए न जाने क्या कुछ लगाते हैं, फेशियल करते हैं, फाउंडेशंस लगाते हैं, लेकिन जो अहादीस को पढ़ता बढ़ाता है उसके चेहरे पर अल्लाह के हुक्म से एक चमक आ जाती है। तो चाहते हैं अपने चेहरों की चमक? चलिए। अन अबी हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु काला काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन अल्लाह ला यंदुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन यंदुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। रवाहु मुस्लिम। तर्जमा है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लो सूरत और मालों की मकदार को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों और आमाल के खुलूस को देखता है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। बड़ी खूबसूरत रिवायत है। दो चीज़ें जिनको अल्लाह नहीं देखता, ना देखने से मुराद क्या है कि अल्लाह ताला उनसे इम्प्रेस नहीं होता। किस बात से? कि तुम कितने खूबसूरत हो और तुम्हारे पास कितना माल है। हाँ, दो चीज़ों को अल्लाह ताला बड़े शौक से देखता है, और वो क्या कि तुम्हारे दिल क्या हैं, इखलास कितना है, और तुम आमाल क्या करते हो। सवाल पैदा होता है क्यों? सोचिए, बड़ी साफ वजह है। क्या कि शक्लो सूरत और माल तो अल्लाह का दिया हुआ है, जो चीज़ वो खुद ही दे रहा है उस पर वो क्यों सोचे? वो तो उसकी देन है, किसी को कम दे किसी को ज़्यादा दे, लेकिन दिल का इखलास और अमल की कसरत या खूबसूरती तो हमारे हाथ में। तो अल्लाह ताला बंदे की कोशिश को देखना चाहता है। इसके बरक्स लोग क्या देखते हैं? लड़की पसंद करने जाएं तो क्या देखते हैं? यही फ़र्क है अल्लाह के देखने में और बंदों के देखने में। आगे चलते हैं, दूसरा चैप्टर, तारीफ़ सुन्ना, सुन्नत की तारीफ। सुन्नत का लुगवी मानी तरीका या रास्ता है, ख्वाह अच्छा हो या बुरा। इसकी दलील, इब्ने माजा की रिवायत अबू जुहैफा रदी अल्लाहु अन्हो से, कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिस शख्स ने कोई अच्छा तरीका जारी किया और इसके बाद इस पर अमल किया गया, तो जारी करने वाले को अपने अमल का सवाब भी मिलेगा, और इस अच्छे तरीके पर चलने वाले दूसरे लोगों के अमल का सवाब भी मिलेगा, जबकि अमल करने वाले लोगों को अपने सवाब में से कोई कमी नहीं की जाएगी। जिस शख्स ने कोई बुरा तरीका जारी किया जिस पर इसके बाद अमल किया गया, तो इस पर अपना गुनाह भी होगा और उन लोगों का गुनाह भी जिन्होंने इस पर अमल किया, जबकि बुरे तरीके पर अमल करने वाले लोगों के अपने गुनाहों से कोई कमी न की जाएगी। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। तो इससे क्या पता चला कि सुन्नत का लफ्ज़ तरीके या रास्ते के लिए आता है। इसका रूट जो है ना, सीन नून नून है। सन्ना या सुन्नु कहते हैं पुराना होने को। कुरान पाक में सूरत बकरा में तीसरे पारे के बिल्कुल इब्तदा में एक वाक्या है हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का, तो वहां खाने की बात है कि लम यतसन्ना, उसका खाना गला सड़ा नहीं। तो बेसिकली सुन्नत के लफ्ज में पुराने का मानी आता है। इसके ऑपोजिट जो लफ्ज होता है वो मुहदस होता है। मुहदस कहते हैं दीन में नया काम, इसी का उर्दू तर्जमा है बिदत। इन्न शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतुम बिदआ व कुल्लु बिदतुन दलाला व कुल्लु दलालतुम फिन्नार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबे में किसी भी दर्स के शुरू में जो पढ़ते थे उसमें ये अल्फाज होते थे कि बेशक नए काम दीन में जो हैं वो बिदत हैं, और हर बिदत गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नुम में लेके जाने वाली है। लेकिन लव सुन्नत की डेप्थ में जाना चाहती हूँ कि सुन्नत कोई मैन मेड चीज़ नहीं होती। सुन्नत कोई नई चीज़ नहीं कि आज के दौर की पैदावार, आज से कुछ साल पहले की पैदावार, इसका ताल्लुक बहुत बैक पे है, रूट्स पे। तो सुन्नत के लफ्ज़ में पुराने का मानी क्यों हुआ कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक पहुंची। आम तौर पे लफ्ज़ सुन्नत है, लेकिन हम सुन्नत नबवी कहेंगे तो अल्लाह के नबी का तरीका। सुन्नत फिरौन होगी तो वो बुरी सुन्नत होगी, सुन्नत हामान होगी तो वो बुरी सुन्नत होगी। तो लिहाजा सुन्नत तरीका या रास्ता है, वो रास्ता जिस पे कसरत से चला जाए। तो इससे पता चलता है कि सुन्नत पे कसरत से अमल होना चाहिए। तो अपनी असल के एतबार से इस लफ्ज़ में कोई अच्छा या बुरा मानी नहीं, देखा जाएगा कि वो कैसे होगा। और इस हदीस से हमारे लिए अमल की एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि कोई काम करते वक्त ज़रूर सोचना चाहिए कि मैं जो काम करने लगी हूँ कल इस काम को देखकर दूसरे करेंगे तो मेरे लिए वो कैसा सदका जारिया होगा। आज के दौर में ट्रेंड्स सेट करने का बहुत रिवाज है। ट्रेंड सेटर्स का लफ्ज़ एक बड़ा लोगों को अट्रैक्ट करता है। कोई नया ट्रेंड या फैशन सेट करने से पहले इंसान ज़रूर सोचे कि मेरे बाद जितने लोग इस तरीके को या इस फैशन को अपनाएंगे क्या मेरे हक में ये अच्छा होगा या बुरा होगा। मेरा ख्याल है कि ये तरीका अगर रोल मॉडल्स को या मॉडल गर्ल्स को या फैशन डिज़ाइनिंग वालों को बता दिया जाए तो कम से कम कोई बेहुदा लिबास मुतारफ़ कराने से पहले एक दफ़ा तो ज़रूर सोचेंगे कि जितने लोग बाद में इस तरीके पर चलेंगे हमारे हक़ में ये कैसा होगा। अगली बात, शरई इस्तलाह में सुन्नत का मतलब रसूलुल्लाह का तरीका है। अन अनस इब्ने मालिकिन काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमन रगिबन सुन्नती फलैस मिन्नी, रवाहुल बुखारी। जिसने मेरे तरीके पर चलने से गुरेज किया वो मुझसे नहीं। इसे सही बुखारी ने रिवायत किया। कितनी बड़ी वईद है इसमें कि जो अल्लाह के नबी के तरीक़ों पे नहीं चलेगा फिर उसका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। अन तलहत बिन अब्दुल्लाह बिन औफ रदी अल्लाह अन्हु क़ाल सल्लैतु खल्फ इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा अला जनाजतिन फ़करा बिफातिहतिल किताब क़ाल लियालमु अन्नहा सुन्नतुन, रवाहुल बुहारी। हज़रत तलहा बिन अब्दुल्ला बिन औफ रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा के पीछे नमाज जनाजा पढ़ी तो उन्होंने इसमें सूरत फातिहा पढ़ी और फरमाया, मैंने ये इसलिए पढ़ी है ताकि लोगों को इल्म हो जाए कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। तो यहाँ हमने देखा कि सुन्नत का लफ्ज़ अल्लाह के नबी के तरीके के लिए आया, यानी यहाँ सुन्नत उन नबी का लफ्ज़ नहीं बोला, बस सुन्नत के लफ्ज़ से पता चला कि ये अल्लाह के नबी का तरीका है। सुन्नत की तीन किस्में हैं, सुन्नत कौली, सुन्नत फ़ेली और सुन्नत तकरीरी। क्या होती हैं इसकी डिटेल्स देखेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी इरशाद मुबारक सुन्नत कौली कहलाता है, जिसकी मिसाल क्या है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो शैतान इस खाने को अपने लिए हलाल समझ लेता है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। तो सुन्नत कौली क्या है कि जो बात अल्लाह के नबी ने बोल के बताई, कौल कहते ही कलाम को है ना। इस हदीस की अलामत क्या होती है, काला का लफ्ज़ आता है, ठीक है, या समेतु का लफ्ज़ आता है, मैंने सुना या कहा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने या तो वो बात बोल के बताई होगी। और अक्सर अहादीस हैं इसी किस्म से ताल्लुक़ रखती हैं, क्या कि अल्लाह के नबी ने बात करके ही और लोगों ने सुन ली। दूसरी सुन्नत की किस्म होती है सुन्नत फ़ेली। اللہ کے نبی کے عملے مبارک کو سنت فعلی کہتے ہیں، جس کی مثال کیا ہے؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست فرماتے، جب ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع فرماتے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ کان رسول اللہ، اللہ کے نبی کا ایک فعل ہے، جب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ وہاں کھڑے ہو کے نہیں کہتے تھے کہ صفیں سیدھی کر لو، کبھی کبھی ایسا بھی کہتے ہوں گے، لیکن اس روایت میں جو لفظ ہیں کیا کہ اللہ کے نبی خود صفوں کو سیدھا کرواتے تھے، تو اب یہ سیدھا کروانا ایک فعل ہے نا، تو ایسی روایتیں جو ہیں عموماً کانا کے لفظ سے آتی ہیں، تھے یا الفعلا یا فعلتا، اس طرح کے لفظ اس کے اندر آتے ہیں کہ اللہ کے نبی کوئی کام کریں اور اس کو کر کے دوسروں کو دکھائیں۔ تیسری قسم سنت تقریری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو کام کیا گیا ہو اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو یا اس پر اظہار پسندیدگی فرمایا ہو، اسے سنت تقریری کہتے ہیں۔ اس کی دلیل، حضرت قیس بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صبح کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا تو فرمایا، صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے، یعنی سب لوگ 2 رکعت جب اللہ کے نبی کے پاس ساتھ پڑھ چکے تو ایک شخص نے دوبارہ نیت کر کے 2 رکعتیں پڑھنی شروع کر دی، تو آپ نے کہا کہ یہ 2 کیوں؟ اس آدمی نے جواب دیا، میں نے فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھیں، یعنی جو 2 سنتیں نماز سے پہلے ہوتی ہیں وہ نہیں پڑھی تھی، لہٰذا اب پڑھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے، یعنی اس کی اجازت دے دی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے نہ کچھ بولا نہ کچھ کر کے دکھایا، لیکن آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ خاموش رہے، یا آپ نے اس کو ویریفائی کیا، یہ چیز بھی سنت ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے نبی کی تو خاموشی بھی قانون ہے، آپ کا کچھ کرنا بھی قانون ہے، آپ کا بولنا بھی قانون ہے۔ ہم دن میں کتنے غلط کام ہوتے اور کرتے دیکھتے ہیں لیکن خاموش رہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبیوں کی یہ شان نہیں تھی، وہ کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لیتے تھے، چاہے ناگواری کا اظہار زبان سے کریں یا اپنے عمل سے۔ تو لہٰذا سنت کی تیسری قسم کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے کوئی کام ہوتے ہوئے دیکھا ہو اور اس پہ خاموشی اختیار کی ہو۔ ان تینوں چیزوں کو جمع کرنے کے بعد اگر چند جملے بولوں جس سے آپ اس موضوع کو مزید سمجھیں، عموماً ہمارے ہاں احادیث کا کیا تصور آتا ہے؟ کلاس روم لگا ہوا ہے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے اور صحابہ کرام طالب علم بن کے حدیثیں نوٹ کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں ایسا تصور آتا ہے؟ یہی آتا ہے نا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ یہ جو احادیث کی صورت میں ہمارے پاس بہترین خزانے جمع ہوئے نا، یہ ایسے نہیں تھے کہ اللہ کے نبی نے دن کا ایک خاص حصہ رکھا ہوا تھا اور کہتے تھے آؤ اب میں تمہیں حدیثیں لکھاؤں اور تم لکھ لو، نہیں، چلتے پھرتے، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، آپ کا بولنا، آپ کا گھر میں بیویوں کے ساتھ رہنا، بازاروں میں جانا، تجارت کرنا، آپ کی زبان سے جو لفظ نکلتا تھا وہ حدیث تھی۔ صحابہ کرام بے چین رہتے تھے آپ کی باتوں کو نوٹ کرنے کے لیے، کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی انسان ہیں، کبھی غصے میں ہو سکتے ہیں، کبھی خوشی میں ہو سکتے ہیں، کبھی کوئی بھول لاحق ہو سکتی ہے، اس لیے ان کی ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو پھر اس پہ آپ نے فرمایا کہ اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق کے ساتھ نکلتا ہے، وما ینطق عن الہوا۔ تو لہٰذا شرح صدر کے ساتھ اللہ کے نبی کی کسی حدیث کو سن کے معنی کریں، کیونکہ آپ کا ایک ایک ایکشن ہمارے لیے دلیل تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ماننے والوں میں سے بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔